आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने बात की थी कि ह्यूमन आई जो दो होती है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। एक से ही क्यों नहीं काम चलाया गया, जब इवोल्यूशन हुआ तो उस वक्त दो ह्यूमन आई बनाने का रीजन क्या था। तो दो आईज होने के फायदे ये हैं कि आप अगर एक आई से देखते हैं तो उससे जो आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री की मिलती है, लेकिन अगर आप दो आंखों का यूज करते हैं तो उससे आपकी फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है। दूसरा ये कि आपकी आईज अगर किसी एक ऐसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रही हैं जो बहुत फेंट है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो एक आई उसको उतना अच्छे से नहीं देख पाएगी, लेकिन दो आईज फेंट ऑब्जेक्ट को भी बहुत इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ह्यूमन आईज जो होती हैं वो फ्रंटली प्लेस्ड होती हैं, सामने को होती हैं, लेकिन बाकी के एनिमल्स कुछ होते हैं जो प्रे एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार किया जाता है, जैसे कि खरगोश या फिर छोटे से जो एनिमल्स हैं जिनका शिकार करते हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे होते हैं जिनकी आईज आप लोग देखेंगे उनकी आईज लेटरली प्लेस्ड होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट इस तरीके से होती हैं, लेकिन ह्यूमंस की दोनों आईज जो हैं वो फ्रंटली प्लेस्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा ये है कि ह्यूमंस को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रे एनिमल्स के कंपैरेटिवली तो कम मिला, लेकिन दूसरा फायदा ह्यूमंस को ये मिला था कि हमारे पास स्टीरियोप्सिस की एबिलिटी थी। और मैंने आपको बताया था स्टीरियोप्सिस क्या होता है। स्टीरियोप्सिस होता है हमारी जो ह्यूमंस की आईज है वो अंदाजा लगा सकती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पे रखा है, लेकिन जो प्रे एनिमल्स हैं इनके पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू तो है क्योंकि इनकी आईज जो हैं वो लेफ्ट और राइट में प्लेस्ड है, तो जो लेफ्ट में प्लेस्ड है वो सारी की सारी चीज़ें देख सकती है, उसके लेफ्ट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे भी देख सकती है, फ्रंट की चीज़ों को भी देख सकती है, तो और राइट वाली जो है वो राइट की चीज़ों को देख लेगी और फ्रंट की चीज़ों को भी देख लेगी। तो बिना हेड को रोटेट किए प्रे एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर रखी है। लेकिन जो प्रे एनिमल्स हैं उनकी आईज फ्रंटली तो प्लेस्ड हैं, उनको उतना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलता जितना प्रे एनिमल्स को मिलता है, तो ह्यूमंस जो हैं उनकी आंखें फ्रंटली प्लेस्ड होने की वजह से उनको उतनी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिल पाती जितनी प्रे एनिमल्स को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक एबिलिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया तो दूसरी एबिलिटी को इंक्रीज किया गया है, ह्यूमंस के अंदर स्टीरियोप्सिस देखी जाती है जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे आसपास रखा है तो हम अंदाजा लगा पाते हैं कि वो कितनी दूरी पर अप्रॉक्सीमेटली रखा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमारी आंखों का क्या क्या हमारे पास फायदा है। उसके बाद हमने बात की थी अलग अलग डिफेक्ट्स की, जो आंखें होती हैं बहुत से लोगों की आंखें जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल और हेल्दी ही हो, विथ टाइम भी इसकी काफ़ी सारी डिफेक्ट्स देखने को मिलती हैं, किसी किसी को तो वो बॉर्न ही होते हैं इन डिफेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर हमने मेनली तीन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसके अलावा एक और डिफेक्ट होता है लेकिन उसके बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, एस्टिगमेटिज्म नाम होता है इस डिफेक्ट का। इसमें लोगों को जो उनकी एक्सिस होती है वही डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो डिस्टॉर्टेड विजन उनको दिखती है और उस वक्त उनकी जो एक्सिस होती है वो ख़राब हो गई होती है। तो इसके बारे में आप लोग 11th 12th में पता लगाएंगे, आपको बताया जाएगा कि एस्टिगमेटिज्म नाम की भी एक डिफेक्ट देखी जाती है लोगों में, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ मेनली तीन के बारे में पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया जो होता है इसको हम लोग फार साइटेड नियर साइटेडनेस कहते हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, मायोपिया में जो दूर की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं, कम दिखती हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन्फिनिटी से थोड़ा करीब शिफ्ट हो जाता है हमारा फार पॉइंट। और इसको नियर साइटेडनेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पास की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा लेंस होता है, आई लेंस होता है, डिफेक्ट के दो कारण हैं, मायोपिया के डिफेक्ट के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हो सकता है कि आँख की जो लेंस है उसकी कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो रेज पड़ रही हैं लेंस के ऊपर वो रेटिना के इनफ्रंट पर ही फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेटिना पर ना फोकस होने की वजह से चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो अगर कोई बहुत दूर से रेज पड़ रही हैं तो उस केस में क्या होगा कि फोकस जो है वो उन सारी रेज जो है वो कहाँ पर फोकस हो जाएंगी, रेटिना के सामने फोकस हो जाएंगी, तो इसको ठीक करने का मेथड क्या है, इसको ठीक करने का मेथड है कि कॉनकेव लेंस यूज किया जाए, क्योंकि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है तो वो सामने फोकस नहीं होने देगा, वो रेटिना पर फोकस कराएगा, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से फिर दिखाई देने लगेगा। तो मायोपिया होने के पीछे का कारण एक तो ये है कि हो सकता है लेंस की कर्वेचर बहुत ज्यादा है, दूसरा ये हो सकता है कि जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड है, वो स्फेरिकल ना हो करके थोड़ी सी ओवल सी है, जिसकी वजह से जो फोकस हो रही है रेज लेंस से पास होने के बाद वो रेटिना के सामने ही हो जा रही है। दूसरी डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखती हैं, फार साइटेडनेस है, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो इस पर भी रखी हुई चीज दिखाई नहीं देगी, तो इसमें कहते हैं कि नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। मायोपिया में फार पॉइंट करीब शिफ्ट हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आगे को शिफ्ट हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, वो डिस्टेंस जिस पर हमें मिनिमम डिस्टेंस पर दिखाई दे वो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास में अगर उनकी चीज कोई रखी हो तो उन्हें नहीं दिखता, उसे वो थोड़ा आगे की ओर दूर कर देते हैं खुद से तो उन्हें प्रॉपर दिखता है। तो ऐसे लोगों को जो जिनको हाइपरमेट्रोपिया होती है उन्हें दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। जिनको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है कि उनको हो सकता है कि दो कारणों की वजह से ये दिक्कत हुई हो, या तो उनकी आई लेंथ जो है उसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी है जिसकी वजह से रेटिना के पीछे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर उनकी जो आई बॉल है वही बहुत छोटी है जिसकी वजह से रेटिना के पीछे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे लोगों को जो क्योर दिया जाता है उन्हें कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा बना करके दिया जाता है, पावर उनके अप्रोक्सीमेट जिस तरीके की उनको पावर चाहिए उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट पावर जो है उसको कॉन्वेक्स लेंस को उस पावर का बना करके दिया जाता है चश्मा बना करके। तो इससे क्या होता है कि डिफेक्ट क्योर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसबायोपिया की, तो प्रेसबायोपिया में हमने देखा था कि मोस्टली कॉम्बिनेशन देखा जाता है प्रेसबायोपिया के, जिनको दिक्कत होती है उनमें बेसिकली उनका जो सिलरी मसल्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, लेंस जो है उसको वो अपना कर्वेचर चेंज नहीं कर पाता है, सिलरी मसल्स हेल्प नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी देखा जाता है कि ये दूर की चीजें भी नहीं देख पाते हैं, पास की चीजें भी नहीं देख पाते हैं। तो इनको जो चश्मा बना करके दिया जाता है वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों ही लेंसेस का, उसका अपर पार्ट जो है वो कॉनकेव लेंस का बना होता है, लोअर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और हाँ आज की क्लास को हम शुरू करें तो यहाँ पर आप एक और बात नोटिस कर लें, ध्यान में रख लें कि जो ये आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ये डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है पेज नंबर 189 और पेज नंबर 190 पर, आप पेज नंबर 189 पर देख सकते हैं फिगर 11.2, ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप डायग्रामेटिकली बताएं कि जो डिफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनको क्योर कैसे किया जाता है, तो आप पेज नंबर 189 और 190 पर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिफेक्ट्स का उसको अच्छे से कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर पावर विजन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 1.2 मीटर से आगे की चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये मायोपिक आंख है, इनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको वैसे तो क्वेश्चन में बताया गया, लेकिन अगर ना भी बताया जाए तो आपको खुद भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आगे की चीजें नहीं दिखती है तो उसका मतलब है कि उनको मायोपिया की दिक्कत है, उनको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो दूर की चीजें ना देखने की प्रॉब्लम जो होती है उसको कैसे क्योर करते हैं, कॉनकेव लेंस देकर के क्योर करते हैं। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस दिया जाएगा ऐसे मायोपिक पर्सन को, और पावर इनकी जो होगी वो होगी -0.83, तो -0.83 की पावर वाली लेंस बनाई जाएगी और ऐसे मायोपिक पर्सन जिनको 1.2 मीटर से आगे नहीं दिखता है उनको दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। ऐसा व्यक्ति जिसकी नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन आई है तो उनका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसे अगर वो लास्ट बेंच पे बैठा है तो उसे नहीं दिखता है ब्लैक बोर्ड, तो इसका मतलब है उसे दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसको चीजें नहीं दिखती हैं, तो हो सकता है कि इसको मायोपिया की दिक्कत है इस बच्चे को, और मायोपिया की दिक्कत को क्योर करने के लिए कॉनकेव लेंस दिया जा सकता है। अप्रोप्रिएट पावर देखी जाएगी कि कितने डिस्टेंस के बाद उसको नहीं दिखता है, उस हिसाब से पावर चेक करके उस बच्चे को कॉनकेव लेंस बना करके दी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर्स लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है पेज नंबर 191 पर, इसमें आपको बताया गया है कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी आंखें जो है वो खराब होती हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ता है, और अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आपको रफ फिगर दी है 35 मिलियन लोग हैं जो जिनको नहीं दिखता है, वो भी ऐसे देशों में जो नॉर्मल देश हैं, बहुत ज्यादा ना गरीब देश हैं ना बहुत ज्यादा अमीर देश हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड्स जैसे कि इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। तो इस तरीके की कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड कहलाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो यहाँ रफली 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको नहीं दिखता है, इनकी आंखों की रोशनी नहीं है। उनमें से भी करीब करीब 4.5 मिलियन जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें नहीं दिखता है, और उनको उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। बच्चे मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो बॉन्ड है इस डिफेक्ट के साथ, वो बॉन्ड है वो, या फिर एडिशन भी हो सकता है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी कॉर्निया जो है वो डैमेज हो गई हो किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो रफली 4.5 मिलियन लोग जो है वो ऐसे हैं जिनकी कॉर्निया खराब है, और कॉर्निया को रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी का कोई डिफेक्ट हो जैसे लेंस खराब हो या फिर कर्वेचर खराब हो तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। इसमें सर्जरी जो होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है, डॉक्टर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो उसको, और ट्रांसप्लांटेशन करने में ब्लड की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ब्लड भी वहां पर ज्यादा नहीं निकलता है जब सर्जरी की जाती है कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन की। तो इसलिए कॉर्निया जो है अगर कोई व्यक्ति डोनेट करे तो वो कॉर्निया उन लोगों को दी जा सकती है जिनकी आंखें खराब है। तो ये जो 4.5 मिलियन लोग हैं जिनकी कॉर्निया खराब है, उनमें से भी मैक्सिमम जो है वो बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे हैं, 12 साल से छोटे बच्चे हैं। तो इनको अगर समय पे कॉर्निया मिल जाएगा तो इनकी लाइफ, पूरी लाइफ ये फिर देख पाएंगे। तो आई डोनर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके से डोनेशन कर सकते हैं? आई डोनर्स जो है वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, वो चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उनकी कैटरेक्ट की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, वो सभी लोग दे सकते हैं अपनी कॉर्निया। साथ ही में ऐसे लोग भी दे सकते हैं जिनको मान लीजिए डायबिटीज की दिक्कत है, चाहे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अस्थमा की दिक्कत है, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जिनको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो एक ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ऐसे हर कोई भी जो है वो अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। आईज जो हैं वो एक डेड बॉडी में भी 4 से 6 घंटे तक फंक्शनल होती हैं, तो आईज को डेड बॉडी से 4 से 6 घंटे के बीचों बीच निकाल लें तो उसको यूज किया जा सकता है बाद में, और इनको आई बैंक में रख दिया जाता है। आई बैंक से कोई आते हैं तो वो लेकर के आईज को ले जाते हैं और आई बैंक में सेफली रख देते हैं। ये जो आई रिमूवल का प्रोसेस है इसको ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, 10 से 15 मिनट लगता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उतना ज्यादा ब्लड नहीं निकलता है जैसे किसी और सर्जरी में निकलता है, तो इसीलिए कोई डिसफिगरमेंट भी नहीं होती है, आप पता भी नहीं चलेगा कि उस डेड बॉडी की आईज में से कॉर्निया लिया गया है, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर कोई डोनेशन करना चाहे तो वो खुशी खुशी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, अब अगर हम बात करें कि कौन लोग नहीं कर सकते डोनेट, तो वो होते हैं जिन्हें कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो, इन्फेक्टेड डिजीज हो, जिनको मान लो एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, रेबीज हो, या फिर ल्यूकेमिया हो। ल्यूकेमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है, तो जिनको ल्यूकेमिया है वो भी नहीं कर सकते, टिटनेस की जिनको बीमारी रही हो वो भी नहीं कर सकते, कॉलेरा वाले नहीं कर सकते, मेनिनजाइटिस बेसिकली ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, ब्रेन का जो अपर लेयर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो मेनिनजाइटिस वाले नहीं कर सकते, एनसेफेलाइटिस वाले नहीं कर सकते। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं जिनको ये सारे डिजीजेज हैं ये लोग नहीं कर सकते हैं आईज डोनेट। तो आपको एक और जानकारी कि जो आईज है, अगर एक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद आईज डोनेट करता है तो उसकी एक आंख से 4 लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि 2 जो आईज है पर पर्सन, 2 आईज होती हैं जो हेल्दी ह्यूमन आई में होती हैं, तो डेड बॉडी से एक एक कॉर्निया जो है वो दी जाती है तो जब ऑपरेशन करके कॉर्निया दे दी जाती है तो वन पेयर ऑफ आईज जो है वो चार कलर कॉर्नियर ब्लाइंड पीपल को रोशनी दे सकते हैं। कॉर्निया जिनकी चार लोगों की कम से कम खराब है तो चार लोगों को रोशनी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम यहाँ पर प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से रिफ्रैक्शन होती है लाइट की ये पढ़ेंगे। आपने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं और उसमें दो पैरेलल, दो सामने सामने फेसिंग साइड्स होती हैं, तो हम एक साइड से लाइट को ऑब्लिकली पास कराते हैं तो दूसरे साइड से वो लाइट निकलती है। लेकिन वो लाइट जो होती है वो दोनों आपस में पैरेलल होती है, भले ही वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गई होती है। जो लाइट होती है, लाइट रे जो है वो शिफ्ट हो गई होती है, लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो गई होती है। लेकिन वो पहली वाली जो इंसिडेंट लाइट थी, तो एमर्ज हुई जो लाइट है दूसरे साइड से, वो दोनों आपस में पैरेलल होती है, कोई एंगल बना करके नहीं एमर्ज होती है वो पहली वाली लाइट रे के साथ में। तो आप लोगों को पैरेलल रेज दिखी थी अपीयर, एक तो आपकी इंसिडेंट रे थी, एक एमर्जेंट रे थी, तो ये दोनों आपको पैरेलल अपीयर हो रही थी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में। लेकिन प्रिज्म के केस में कैसे होता है ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हमें इसीलिए एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी 11.1, ये है आपके पेज नंबर 192 पर। इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको व्हाइट पेपर चाहिए होगा, एक ड्रॉइंग बोर्ड चाहिए होगा, पिंस चाहिए होंगी, ड्रॉइंग पिंस चाहिए होंगी, करीब करीब चार ड्रॉइंग पिंस चाहिए होंगी, स्केल चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आपका ये जो प्रिज्म है ये चाहिए होगा, ग्लास प्रिज्म चाहिए होगा। ग्लास प्रिज्म जो है ये ग्लास मटेरियल का बना होता है, अपीयरेंस इसका होता है कि जैसे इसके पांच फेसेस हैं और पांचों ट्रायंगुलर हैं। तो हम यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें, दूसरे प्रिज्म भी होते हैं, हम यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं और उसी के साथ एक्टिविटी करने वाले हैं। तो आपको चाहिए होगा एक प्रिज्म, आपके लैब में होगा, तो आप इस प्रिज्म को ले लीजिए और इसको आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, जो व्हाइट पेपर आपने दिया है उसे ड्रॉइंग बोर्ड पर आप फिक्स कर दीजिए ताकि वो मूव ना करे जब आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये करना है कि प्रिज्म को लेकर के आपको व्हाइट शीट पर इस तरीके से रखना है कि उसका बेस व्हाइट शीट के ऊपर हो, और उसके बाद आपको प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद वो ऐसी अपीयर होगी कि जैसे आपने एक ट्रायंगल बना दिया है, क्योंकि उसका बेस जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा, तो आपको वो ट्रायंगल शेप का एक आउटलाइन मिल जाएगा जब आप लोग प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फिगर 11.4 में, इसमें किस तरीके से ट्रायंगल को बनाया गया है। ये ट्रायंगल बेसिकली आपके प्रिज्म का बेस है, ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने जो ये प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ करनी है ट्रायंगल शेप की, इसके ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके आप देख सकते हैं इसके तीन साइड्स दिख रहे होंगे आपको, दो आपको साइड्स ऐसे लेने हैं जो आमने सामने हो, फेसिंग एक दूसरे को, फेसिंग जो साइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 11.4 फिगर 11.4 में, साइड ए बी और साइड ए सी, ये बेसिकली साइड्स आपको दिख रहे हैं लेकिन हैं तो ये फेसेस, ये आपके प्रिज्म के फेसेस हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने ये जो प्रिज्म का आउटलाइन ड्रॉ किया है ट्रायंगल, इस पर आपको एक साइड जो उसका एक ए बी साइड है, इस पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कुछ एंगल बना करके इसके ऊपर आपको ड्रॉ करनी है। साइड ए बी के ऊपर कुछ एंगल बना करके आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन जो ड्रॉ की गई है इसका नाम रखा गया है पी क्यू, और ये पॉइंट ई पर साइड ए बी को टच कर रही है। तो इसी तरीके से आपको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है लेकिन कुछ एंगल बनाती हुई, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ए बी के साथ कुछ एंगल बनानी चाहिए। आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करेंगे, आप इसके ऊपर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट तो है बट कुछ एंगल बना रही है विथ ए बी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने जो ये लाइन बना दी है, जो ए बी के ऊपर आपने एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं जहां आप ड्रॉइंग पिंस को फिक्स करेंगे, और ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर इस फिगर में 11.4 फिगर में पॉइंट पी और पॉइंट क्यू चूज किया गया है जिसके ऊपर दो पिंस लगाई गई है। तो आप भी लगा सकते हैं इस तरीके से, दो जगहों पर पिंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर अब पिंस लगा दी, अब आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रिज्म वापस से ले लेना है और जो ये आपने आउटलाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर अपने प्रिज्म को रख देना है। अब जब आप अपने प्रिज्म को रख देंगे तो अब तो सिर्फ ये एक डायग्राम नहीं है, अब तो आपने यहाँ पर पिंस भी लगा दी है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर,
उसके बाद अब आपको बेसिकली इमेज दिखने लगेगी। इमेज कैसे दिखेगी, आपने जो ए बी वाली लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर एक फेस होगा आपके प्रिज्म का, और दूसरा वाला उसको दूसरे इसके ऑपोजिट एक और फेस होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि ए बी के ऊपर जो फेस है उसके सामने वाला जो फेस है उसके थ्रू आपको प्रिज्म में देखना है। जिस साइड आपने पिन लगाई हुई है उस साइड से नहीं देखना है, उसके सामने वाला जो फेस है उससे देखना है। और उससे जब आप देखेंगे तो आपको पी और क्यू पे, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे आपने जो पिन लगाई हुई है उसकी इमेज शो होगी। तो आपने जिस साइड पिन लगाई है उसके ऑपोजिट साइड, बिल्कुल उसके सामने फेसिंग साइड जो है उस साइड से आपको देखना है थ्रू द प्रिज्म। और उस साइड से देखने पर आपको जो पी और क्यू, पॉइंट पी और क्यू पे जो आपने पिन लगाई है उन पिन्स की आपको इमेज दिखाई देने लगेगी। तो जिधर भी आपको इमेज शो हो रही है, जैसा अपीयर हो रही है किधर आपको इमेज दिख रही है, उधर आपको दो पिन्स और लगा देने हैं। और उसके बाद आपने पिन जब लगा दिया तो अब आपका काम फिनिश हो गया है। आप प्रिज्म हटा दें और जिधर आपने जो न्यू दो पिन्स लास्ट में अभी लगाई है, इमेज जहां पर आपको दिख रही थी वहां पर आपने सपोज आपने पॉइंट आर और पॉइंट एस के ऊपर पिन्स लगा दी है क्योंकि आपको यहाँ पर इमेज दिख रही थी। आप देख सकते हैं फिगर 11.4 में आपने पॉइंट आर और पॉइंट एस के ऊपर पिन लगा दी है। तो अब आप अपने ग्लास प्रिज्म को हटा सकते हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट आर और एस को जोड़ रही होगी। इस तरीके की आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को एक्सटेंड करके आपने जो पहले से ट्रायंगुलर प्रिज्म का आउटलाइन ड्रॉ किया था इस स्ट्रेट लाइन को उससे टच करा दीजिए। तो सपोज पॉइंट एफ के ऊपर आपकी जो आर और एस वाली लाइन है वो प्रिज्म के ए सी वाले साइड को टच कर रही है। तो पहले तो आपने दो पिंस लगाई थी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर और इसको कैरी करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ए बी वाले साइड को टच कर रही थी एट पॉइंट ई। और दूसरी लाइन अभी आपने जो ड्रॉ की वो ऐसी लाइन है जो कैरी कर रही है पिन आर और एस को, पॉइंट आर और पॉइंट एस के ऊपर जो पिन है इनको कैरी करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये स्ट्रेट लाइन जो साइड ए सी है इसको टच कर रही है एट पॉइंट एफ। तो इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ है ये प्रिज्म के ऊपर है, बेसिकली आपने तो ट्रायंगल यहाँ पर आउटलाइन बनाया हुआ है लेकिन है तो ये प्रिज्म का बेस। तो ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ जो है ये प्रिज्म के ऊपर है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ दीजिए, आपस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका एक ई एफ लाइन प्रिज्म के जो आपने ये आउटलाइन ड्रॉ किया है इसके अंदर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक लाइन तो आपने ड्रॉ की है पी क्यू वाली लाइन जो पॉइंट ई पर प्रिज्म के बेस को टच कर रही थी, यानी कि साइड ए बी को टच कर रही थी। अब ये जो लाइन है ये अंदर प्रिज्म के अंदर ई एफ स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो ये आर एस वाली लाइन को पाथ को फॉलो करती हुई बाहर निकल रही है। तो ये बेसिकली आपने क्या बनाया है, ये आपने रे का पाथ बनाया है कि रे किस तरीके से घूम रही है, लाइट की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है। जब ये प्रिज्म के ऊपर पड़ी तो पी क्यू वाले लाइन से पड़ी, उसके बाद प्रिज्म के अंदर इसने ई एफ वाली लाइन फॉलो की और बाहर जब निकली दूसरे फेस से तो ये आर एस वाली लाइन को फॉलो करते हुए निकली। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पी क्यू टू ई एफ टू आर एस है तो आपने जो एरो बनाने हैं वो भी इसी तरीके से बनाने हैं, फ्रॉम पी क्यू टू ई एफ टू आर एस। तो इस तरीके से आपको बनाना है। बाकी बेसिकली तो आगे का प्रोसेस बहुत आसान है, जैसे आप लोगों ने वहां पर रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में फिर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ताकि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस पता चल जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपकी जो साइड ए बी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, आप गाढ़ी लाइन से नहीं ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से स्केल की सहायता ले लीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए साइड ए बी के ऊपर और साइड ए सी के ऊपर, दोनों साइड्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। और परपेंडिकुलर और एंगल जो बना रहा है किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ, जो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं साइड ए बी वाले की तरफ देखिए, आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि नाम उसका है एन एन डैश और ये डॉटेड लाइन से शो किया है। और ये एन एन डैश जो परपेंडिकुलर है ये पी क्यू लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको। उसके बाद जैसे ये लाइट एंटर करेगी फ्रॉम एयर टू इन साइड द प्रिज्म, तो एक ग्लास मटेरियल है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो जब भी कभी लाइट एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंटर करती है तो उसमें कुछ रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसकी रास्ता चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर भी रास्ता चेंज हो गया। और क्योंकि ग्लास का मटेरियल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज्यादा है तो इसलिए एंगल को कम होना पड़ेगा, तो इसीलिए लाइट ने कहाँ बेंड किया, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। और यहाँ पर एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा जो कि पहले ही बनेगा जब साइड ए बी वाली की तरफ से लाइट ने एंटर किया फ्रॉम एयर इनसाइड द प्रिज्म। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आप चाहे तो स्मॉल आर वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइड ए बी जो है वहां पर जो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाए हुए हैं, लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, तो इस केस में जो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाए हुए हैं इसको आप स्मॉल आर वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार ये और रिफ्रैक्ट होगी लाइट, दूसरे वाला केस कब होगा, तब होगा जब ये ग्लास से एयर में आ रही होगी। यहाँ पर एक सिचुएशन तो तब थी जब इसने लाइट ने एंटर किया फ्रॉम एयर इनसाइड द ग्लास, उसके बाद ग्लास से अब एयर में आएगी तो एमर्ज होगी, बाहर निकलेगी, तभी तो आपको आर एस वाला पॉइंट मिला था, तभी तो आपने देखा था ये इमेज कहाँ बनी है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सिचुएशन भी है जब लाइट बाहर निकल रही है तो वहां पर भी एक एंगल होगा रिफ्रैक्शन का, तो पहले वाले रिफ्रैक्शन के एंगल को आप स्मॉल आर वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने एंटर कर लिया पॉइंट ई पर, इसने प्रिज्म के अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद इसने पाथ फॉलो किया ई एफ, एफ पे उसके बाद एफ से बाहर इसको निकलना है, तो एफ से जैसे ही बाहर निकलेगी तो ग्लास से एयर की तरफ निकल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन का एंगल होगा, तो उसे आप आर टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ए सी वाला जो साइड है यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और परपेंडिकुलर के साथ जो ई एफ वाली लाइन एंगल बना रही है वो आर टू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है जब भी कभी एंगल्स आप दिखाते हैं वो एंगल्स परपेंडिकुलर के साथ वाली होती है, रिफ्रैक्शन का जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो एंगल्स इसमें जो भी आप मेजर करते हैं वो परपेंडिकुलर के साथ वाली एंगल है, दूसरी कोई एंगल आपको मेजर नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर तो उस साइड ए बी की तरफ बनाई एंड एंड डैश, और दूसरी आपने जो परपेंडिकुलर बनाई वो ए सी वाले साइड पे बनाई और ये एम एम डैश है, तो ये परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना करके लाइट बाहर निकल रही है, फेस ए सी से बाहर निकल रही है और आर एस को फॉलो करती हुई निकल रही है, तो ये एंगल जो बन रहा है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लाइन आर एस, इमरजेंट रे जो है उसके साथ और परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहे हैं, क्योंकि इमर्ज होती हुई लाइन लाइट ने जो एंगल बनाया है विथ परपेंडिकुलर दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इमरजेंस की जो एंगल है वो कौन सी है, एम एम डैश और आर एस वाली लाइन के बीच की है, आर एस वाली लाइन जो है वो इमरजेंट रे है और परपेंडिकुलर जो है वो एम एम डैश है, तो ये एंगल जो बन गई इन दोनों के बीच में ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो इस तरीके से आपने सारे जो लेबलिंग है वो सारी कर लेनी है, आपकी एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस एक छोटा सा काम और रह गया है। ये काम ये है कि आपको क्या करना है बेसिकली कि आपने जो पी क्यू वाली लाइन ड्रॉ की थी ना इसको स्केल रख के इसके ऊपर इसको एक्सटेंड करो, इसको और लंबा कर दो, प्रिज्म को क्रॉस करता हुआ पूरा एक्सटेंड कर दो। तो इसको एक्सटेंड जब कर दोगे तो एक्सटेंशन वाली जो लाइन होगी उसे डॉटेड लाइन से बनाना। यहाँ पर देख सकते हो फिगर 11.4 में पी क्यू वाली लाइन को लंबा खींचा गया है लेकिन ई के बाद उसे डॉटेड बनाया गया है। तो आपने क्या किया है बेसिकली आपने एक लाइन ड्रॉ की है पी क्यू, पी क्यू से ये पॉइंट ई के ऊपर फेस ए बी को टच कर रही है और पॉइंट ई के बाद भी इस लाइन को लंबा खींचा गया है लेकिन ई के बाद जो लाइन खींची गई है वो डॉटेड बनाई गई है। जैसा आपने यहाँ पर पी क्यू वाली लाइन को एक्सटेंड किया है सिमिलरली आर एस वाली जो लाइन है इसे भी एक्सटेंड करना है आपको, और यहाँ पर आर एस वाली जो लाइन है वो फेस ए बी सॉरी फेस ए सी को कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट एफ पे टच कर रही है, तो पॉइंट एफ पर आर एस वाली लाइन जो है वो फेस ए सी को टच कर रही है, तो एफ के बाद भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है लाइन को, ज्यादा बहुत लंबा नहीं एक्सटेंड करना है, बहुत थोड़ा सा ये एक्सटेंड करना है, पॉइंट जी तक एक्सटेंड करना है, उस पॉइंट तक जहां पर आर एस वाली लाइन और पी क्यू वाली लाइन आपस एक दूसरे को क्रॉस करें, कट करनी चाहिए, इस ऐसे एक पॉइंट को आपको ढूंढना है जहां पर पी क्यू वाली लाइन और आर एस वाली लाइन एक दूसरे को कट करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिगर 11.4 में पॉइंट जी जो आपको दिख रहा है, पॉइंट जी ये ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जी बेसिकली क्या है, ये पॉइंट जी बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर पी क्यू वाली लाइन और आर एस वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, और जब ये काट रही होंगी तो आप डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक एंगल भी ये बना रही है, पी क्यू वाली लाइन और आर एस वाली लाइन पॉइंट जी पर एक एंगल बना रही है जिसे डी एंगल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बता रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन ये बता रहा है कि पी क्यू वाली लाइन को फॉलो करती हुई हमने इंसिडेंट लाइट जो थी वो प्रिज्म पर डाली थी, लेकिन अब ये जो है वो बाहर निकल रही है आर एस वाली लाइन को फॉलो करती हुई, तो ये अपने पाथ से भटक गई है, भटक गई है को इंग्लिश में डेविएट हो गई है कहते हैं। तो बेसिकली पी क्यू वाली लाइन जो है वो आर एस वाली लाइन को फॉलो करते हुए प्रिज्म के दूसरे फेस से निकल रही है, तो ये अपने रास्ते से भटक गई है। पी क्यू से इसको निकलना चाहिए था लेकिन ये निकलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हो गया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पी क्यू से फॉलो करती हुई लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी लेकिन ये इमर्ज हो रही है आर एस वाली लाइन को फॉलो करती हुई, तो ये अपने पाथ से भटक गई है, डेविएट हो गई है। तो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन भी है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी पूरी जो है परफॉर्म करनी है। इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, पी क्यू ई इस तरीके से जो लाइन है पी क्यू वाली लाइन है जो ए बी को ई पर टच कर रही है, पॉइंट ई पर ए बी वाले साइड को टच कर रही है, तो ये वाली जो रे है बेसिकली ये रे है, हमने तो लाइट की पाथ बनाई है ना, तो पी क्यू वाली लाइन जो है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बता रही है और आर एस वाली जो लाइन है जो पॉइंट एफ पर ए सी को टच कर रही है ये आर एस वाली लाइन जो है ये इमरजेंट रे है। अब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कौन सी है, वो ई एफ है, प्रिज्म के अंदर या फिर ट्राइंगल के अंदर आपने जो ये लाइन बनाई है ये ई एफ वाली लाइन जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है और बाकी यहाँ पर एक और एंगल बच जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हर एक प्रिज्म का कुछ ना कुछ एंगल होता है, यहाँ पर आपने जो ये ट्राइंगल बनाया हुआ है इसका जो भी एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। तो आप पॉइंट ए जो आपने ये ट्राइंगल बेसिकली क्या बनाया है ए बी सी, तो ए का एंगल चेक कर लो चाहे बी का एंगल चेक कर लो चाहे सी का एंगल चेक कर लो, इसमें से कोई सा भी एंगल जो है आप चेक कर लो वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। आपका जो ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका आप कहीं से भी एंगल चेक कर लें ये एंगल जो है ये प्रिज्म का एंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी लेबलिंग कर लेनी है और आपको यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो फिनोमेना हमें दिखते हैं वो पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रिज्म से रिलेटेड ही है। तो आपको इसका जो आधार है वो आज की क्लास में रख दिया गया, आपको समझ में आ गया कि जब भी लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो वो बेंड हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, तो इससे रिलेटेड ही है डिस्पर्शन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।